द्वितीया विभक्ति श्रुतेरुदाहरणम् विहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षणस्य विहांगत्वं द्वितीया श्रुत्या तच्च प्रोक्षणम् न व्रीहिस्वरूपार्थम् तस्य तेन विना क्युपपत्तेः किन्तु पूर्व साधनत्व प्रयुक्तम् व्रीहिन प्रोक्षयागानुष्ठाने अपूर्वानुपपत्तेः एवम् सर्वेष्वङ्गेष्व पूर्व प्रयुक्तमङ्गत्वम् बोध्यम् एवम् इमाम् बिम्भण रसनामृतस्य तस्वाभिधानिमादत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मन्त्रस्याश्वाभिधान्यङ्गत्वम् अर्थ द्वितीया विभक्ति रूपा श्रुति से अंगांगी भाव का बोध होता है जैसे ब्रीहीन प्रोक्षति अर्थात ब्रीही को पानी से छिड़कता है। इस वाक्य के ब्रीहीन पद में श्रुत द्वितीया विभक्ति से यह समझा जाता है कि प्रोक्षण क्रिया ब्रीही का अंग है। यह प्रोक्षण इसलिए नहीं किया जाता कि ब्रीही को उसका अपना रूप प्राप्त कराया जाए क्योंकि प्रोक्षण के बिना भी ब्रीही के स्वरूप की सिद्धि रहती है। प्रोक्षण का अनुष्ठान अपूर्व के साधन के रूप में होता है क्योंकि याग में ब्रीही का प्रोक्षण न करने पर अभिप्रेत अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार के अन्य सभी अंग अपूर्व को उत्पन्न करने के कारण ही अंग माने जाते हैं। इसी तरह इमाम ग्रीम्भणन रसनामृतस्य तस्वाभिधानिमादत्ते एक विधि है जिसमें विधान है कि इमाम ग्रीम्भण रसनामृतस्य इस मंत्र को पढ़कर अश्व की गलरज्जु को पकड़े। इमाम ग्रीम्भणन रसनामृतस्य का अर्थ है कि सत्य की इस रज्जु को पकड़ लिया। उक्त विधि में अश्वाभिधानी पद में श्रुत द्वितीया विभक्ति से यह समझा जाता है कि इमाम ग्रीम्भण रसनामृतस्य यह मंत्र अश्व रज्जु के ग्रहण का अंग है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी द्वितीया रूपां विनियोक्तिं श्रुति मुदाहरति विहीन प्रोक्षतीति तच्चेति प्रोक्षणस्य विहांगत्वं चेत्यर्थ तच्चेत्य क्यापूर्व साधनत्व प्रायुक्त मित्यनेनान्वयः प्रोक्षणं ब्रीहि स्वरूपार्थमेव स्यादिति कुतस्तस्या पूर्व प्रयुक्तं ब्रीहांगत्व मित्यर्थ आह प्रोक्षणं नेति प्रोक्षणस्य ब्रीहि स्वरूपार्थत्वाभावे हेतुमाह तस्येत्यादिना तस्य ब्रीहि स्वरूपस्य तेन विना प्रोक्षणेन विनेत्यर्थः ननु यागानुष्ठाने नैवापूर्व सिद्धौ किं प्रोक्षणेन ब्रीहि स्वरूपानुपायोगिनेत्यर्थः ब्रीहिन् प्रोक्ष्येति अनुपनीतानुष्ठित वेदाध्ययनस्यापूर्वाजनकत्वदत् ब्रीहिणां प्रोक्षणं न कृत्वा तैरनुष्ठितस्य यागस्यापूर्वजनकत्वानुपपत्ति द्वित्यर्थः प्रोक्षणे सिद्धं पूर्व प्रयुक्तं ब्रीहांगत्वमन्यत्रा सिदिशति एवमित्यादिना एवं दर्शपूर्णमास प्रकरण सहकृतया द्वितीया श्रुत्या प्रोक्षणस्य तण्डुल निष्पत्ति प्रणालिकया ब्रीहिणां पूर्व साधनत्व प्रयुक्तांगत्व सर्वेषामङ्गानां वघातादीनां तत्प्रमाणवशाद पूर्व साधनत्व प्रयुक्तमेवांगत्वमित्यर्थः द्वितीया रूपाया विनियोक्त्या श्रुतेरुदाहरणान्तर्माह एवमित्यादिना एवं द्वितीया श्रुत्या प्रोक्षणस्य ब्रीहांगत्वादित्यर्थः जितस्येति सत्यफलस्येत्यर्थः तथा च सत्यफलसम्बन्धिनीं रसनामिमां गृहीतवन्त इति मन्त्रार्थः अश्वाभिधान्यङ्गत्वमिति अश्वाभिधान्या अश्वरसनाया अङ्गत्वमित्यर्थः केचित् तु वाक्यमिमं विनियोगमाहु अन्ये तु वाक्यालिङ्गस्य बलीयत्वेन यावद्वाक्याद् अश्वाभिधान्यङ्गत्वं भवति तावद्रशना मात्रङ्गत्वमेव स्यादिति तत्र दूषणमाहु वाक्यविनियोगवादिनस्तु मन्त्रस्य न रसनामात्रप्रकाशकत्वं किन्तु ऋतस्य सत्यफलसाधनभूतस्य अश्वस्य साम्रशनां गृहीतवन्त इत्यस्वरसना प्रकाशकत्वमेवेति लिङ्गसहकृता रस्वाभिधानिमादत्त इति वाक्यान् मन्त्रस्याश्वरसनादाने विनियोग इति स्वाशयमाहु रसनाविशेषस्य न लिङ्गमिति मूलग्रन्थतात्पर्यम् अर्थबोधिनी। इसके पूर्व तृतीया विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति के स्वरूप का निरूपण किया जा चुका है। ग्रंथकार अब यहाँ द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति के स्वरूप पर प्रकाश डाल रहे हैं। ब्रीहीन प्रोक्षति यह एक विनियोग विधि है। ब्रीहीन प्रोक्षति का अर्थ है ब्रीही को छिड़कता है। यहाँ ब्रीहीन पद द्वितीय विभक्ति अंत है, अतएव ब्रीही कर्म कारक होने से साध्य हुआ और इसलिए प्रोक्षति क्रिया पद बोध्य प्रोक्षण उसका साधन हुआ। अभिप्राय यह है कि ब्रीही साध्य होने से प्रधान अर्थात अंगी है और उसका साधन भूत को प्रोक्षण ब्रीही का अंग हुआ। सारांश यह है कि द्वितीय विभक्ति से प्रोक्षण ब्रीही का अंग सिद्ध होता है। यही अर्थ प्रोक्षण से ब्रीहंगत्वम द्वितीय श्रुत्या इन शब्दों का है। प्रोक्षण ब्रीही का अंग है सही, किंतु प्रश्न यह है कि प्रोक्षण का प्रयोजन है क्या? क्या प्रोक्षण से ब्रीही अपने स्वरूप को प्राप्त करता है? उत्तर मिलेगा नहीं। प्रोक्षणम न ब्रीही स्वरूपार्थम, क्योंकि बिना प्रोक्षण किए भी ब्रीही ब्रीही ही रहते हैं। तस्य ब्रीही स्वरूपस्य तेन प्रोक्षणेन बिना अपि उपपत्त सिद्धत्वात्, पुनश्च प्रोक्षण के द्वारा ब्रीही के स्वरूप में कोई विशेषता भी आती नहीं देखी जाती। अतएव प्रोक्षण क्रिया का कोई ऐसा नहीं प्रयोजन जो दृष्ट हो, जिसे प्रत्यक्षतः देखा जा सके। सिर्फ प्रोक्षण का क्या प्रयोजन है? ग्रंथकार का उत्तर है कि उससे अपूर्व या अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। अतएव प्रोक्षण अपूर्व के साधनार्थ ब्रीही का अंग होता है, किंतु तच्च अपूर्व साधनत्व प्रयुज्यम्। यदि ब्रीही का प्रोक्षण नहीं किया जाएगा तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। ब्रीहीन प्रोक्ष यागानुष्ठाने अपूर्वानुपपत्ति, और बिना अपूर्व की उत्पत्ति हुए याग के फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। यह स्थिति अन्य अपूर्व प्रयोजक अंगों के विषय में भी समझना चाहिए। आज्यम वेक्षते विधि में आज्यांग भूत अंग अवेक्षण क्रिया भी अपूर्व फलक है, क्योंकि यहाँ आज्यावेक्षण का कोई दृष्ट फल नहीं है। ध्यान रहे कि प्रोक्षण एवं अवेक्षण आदि अंग भूत क्रियाएं जिन्हें अदृष्टार्थक कहा जाता है, उन्हें केवल अदृष्टार्थक ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका विनियोग अपूर्व की उत्पत्ति के लिए होता है। किंतु अवघात आदि अंग भूत क्रियाएं जिन्हें दृष्टार्थक कहा गया है, दृष्टार्थक होने के साथ ही साथ अदृष्टार्थक भी होती है। ऐसा न मानने पर प्रासंगिक वितुषीकरण रूप दृष्ट प्रयोजन नख विदलन आदि अन्य क्रियाओं से भी संपन्न हो सकता है, किंतु उस स्थल पर नियम विधि द्वारा केवल वही क्रिया करने का विधान किया जाता है, अन्यथा क्रिया जन्य अपूर्व की उत्पत्ति नहीं मानी जा पाएगी जो कि मानी जाती है एवं नियमापूर्व शब्द द्वारा कथित होती है। कहने का तात्पर्य है कि ब्रीहीन अवहंती इस विधि स्थल में अवघात के केवल तूष विमोचन के लिए होता तो भूसी अवघात द्वारा न हटाकर नख विदलन द्वारा भी हटाई जा सकती थी, किंतु नाखून द्वारा धान की भूसी को हटाने से अपेक्षित अपूर्व की प्राप्ति न हो सकेगी। इसलिए दृष्टार्थक क्रियाएं दृष्टार्थक होते हुए भी अपूर्वार्थक भी होती हैं। आरुण्य गुण है और प्रेरण क्रिया है। गुण और क्रिया दोनों अमूर्त है। दो प्रकार के अमूर्तों के अंगत्व पर विचार करने के पश्चात एक अन्य अमूर्त पदार्थ मंत्र के अंगत्व पर विचार किया गया है। इमां गृम्भणन रसनामृतस्य श्वाभिधानी मादते, यहाँ अश्वाभिधानी पद में द्वितीय विभक्ति है, अतएव द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोग त्रिश्रुति से इमां गृम्भणन रसनामृतस्य यह मंत्र अश्वाभिधानी घोड़े के गले में बंधी हुई रस्सी के ग्रहण का अंग होता है। इमां गृम्भणन रसनामृतस्य यह मंत्र तैत्तिरीय संहिता में प्राप्त होता है एवं इसका उल्लेख करके अश्वाभिधानिम आदत्ते इस प्रकार का विनियोग शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। महानिचयन प्रकरण में मिट्टी की यज्ञ वेदी बनाने के लिए अध्वर्यु एक अश्व एवं एक गर्धक से अरण्य जाकर मिट्टी लाए ऐसा विधान है। अध्वर्यु अश्व रचना को पकड़ते हुए इमाम गृम्भणन रसनामृतस्य मंत्र को पढ़े ऐसा विधान है। द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति से मंत्र अंग बनता है और अश्वाभिधानी का ग्रहण अंगी। इस प्रकार अमूर्त मंत्र भी द्वितीय विभक्ति द्वारा अश्वाभिधानी के ग्रहण का अंग हुआ समझा जाता है। मंत्रोच्चारण अदृष्टार्थक है क्योंकि इसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है, अन्यथा मंत्रोच्चारण के बिना भी अश्वरचना का ग्रहण किया जा सकता है। प्रसंग सप्तमी विभक्ति रूपा विनियोग श्रुति से अंगत्व समझा जाता है। तथा इसी प्रकार अन्य अनुल्लिखित विभक्तियों से भी अंगत्व का बोध होता है। इसी विषय का उल्लेख किया जा रहा है। सप्तमी विभक्ति श्रुतेर उदाहरणम् यदा हवनीये जुहोति इत्याहवनीयस्य होमांगत्वम् सप्तमी श्रुत्या एव मन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः। अर्थ यदा हवनीये जुहोति अर्थ आहवनीय अग्नि में हवन करे। इस वाक्य के आहवनीय पद में श्रुत सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति से यह बोध होता है कि आहवनीय अग्नि याग का अंग है। इसी प्रकार विभक्ति श्रुति से अन्य विनियोग भी समझे जाने चाहिए। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी सप्तमी विभक्ति रूपां विनियोग त्रिम श्रुतिम उदाहरति यदाहवनीय इति एव मन्योपीति दध्ना जुहोति पयसा जुहोति त्यादौ होमानुवादेन दध्यादेश संगत्वेन तृतीया विभक्ति श्रुत्या विनियोग इत्यर्थः। अर्थबोधनी यदा हवनीय जुहोति विनियोग विधि है, होम क्रिया है, वह आहवनीय नामक अग्नि में संपन्न होती है। अतएव अधिकरण होने के कारण आहवनीय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ सप्तमी विभक्ति बोध्य अधिकरण आहवनीय गुण हुआ और आधेय होम प्रधान। विभक्ति रूपा विनियोक्ति श्रुति के जो उदाहरण अभी तक दिए जा चुके हैं वे तृतीया द्वितीया एवं सप्तमी विभक्ति रूप हैं। चतुर्थी पंचमी एवं षष्ठी विभक्ति के उदाहरण मूल ग्रंथ में नहीं दिए गए हैं, अतएव मूल में अनुल्लिखित ये विभक्तियाँ भी जहाँ विनियोग विधि के प्रसंग में प्रयुक्त होती हैं, विनियोग विधि द्वारा अंगत्व बोध में सहायिका होती हैं, जैसे मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। यहाँ चतुर्थी विभक्ति रूपा विनियोक्ति श्रुति से मैत्रा वरुण नामक पुरोहित दंड प्रधान क्रिया का अंग समझा जाता है। अग्नि त्रिणान्य पचीनोति में प्रयुक्त पंचमी विभक्ति रूपा श्रुति से अग्नि तृणापचयन तिनके हटाने क्रिया का अंग समझा जाता है। यजमानस्य याज्ञा में प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति से यह बोध होता है कि यजमान याज्ञा का अंग है। उक्त विवरण से यह भी सिद्ध होता है कि प्रकृत स्थल में द्वितीय विभक्त्यंत पदार्थ अंगी होता है, किंतु अन्य विभक्त्यंत पदार्थ अंग होते हैं। इस प्रकार विनियोक्त्री श्रुति के प्रथम प्रभेद विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति का प्रभेद सहित विवेचन समाप्त हुआ। प्रसंग विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति के विवेचन होने के पश्चात अब विनियोक्त्री श्रुति के द्वितीय प्रभेद एका विधान रूपा विनियोक्त्री श्रुति एवं तृतीय प्रभेद एक पद रूपा विनियोक्त्री श्रुति का विवेचन किया जा रहा है। एक पदैका विधान श्रुत्योरुदाहरणम् पशुना यजेत इत्यत्रैकत्व पुंस्तयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम् यजेत इत्याख्याता विहित संख्याया भावनांगत्वम् समानाभिधान श्रुतेरेव एक पद श्रुत्या च यागंगत्वम्। अर्थ पशुना यजेत इस विधि से श्रुतटापत्य रूप समानाभिधान श्रुति से यह ज्ञात होता है कि एकत्व संख्या एवं पुंस्त्व ये दोनों कारण कारक के अंग हैं। इसी प्रकार यजेत पद में श्रुत तप्रत्यय रूप समानाभिधान श्रुति से यह बोध होता है कि आख्यात बोध्य संख्या उसी तप्रत्यय से बोध्य भावना का अंग है, और यजेत रूप एक पद श्रुति से यह बोध होता है कि संख्या याग का अंग है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एकाभिधान रूपामेक पद रूपाम च विनियोक्त्रिम श्रुतिमुदाहरति पशुना यजेतेति पशुनेत्यत्रैक पद श्रुत्या हेकत्व पुंस्त्वयोः पशुद्रव्यांगत्वमेका विधान श्रुत्या च कारकांगत्वं च भवति यजेतेत्यत्राप्याख्याति विहित संख्याया एकाभिधान श्रुत्या भावना गत्वमेक पद श्रुत्या च यागांगत्वं च भवतीति भावः यजेतेत्यभिहित संख्यायाः समानभिधान श्रुतेरेव भावनांगत्वमिति संबंधः समानाभिधान श्रुतेरेवेति एक शब्द रूप प्रत्यय श्रुतेरेवेत्यर्थः अभिधीयते नेनेति व्युत्पत्त्याभिधान शब्देन शब्द उच्यते पदश्रुत्या चेति यजेते तेक पदश्रुत्या चेत्यर्थः। अत्रेदं बोध्यं यथा दशा पवित्रेण गृहं सम्माष्टि तेत्रैकत्वमुद्देश्य गत्वेना विवक्षितं तथा प्रकृतेनोद्देश्य गतमेकत्वं किन्तु विधेय गतत्वेन विवक्षितमेव न च गृहं सम्माष्टि त्यत्र नोद्देश्य गतमेकत्वं किन्तु स्वयं विधेयमिति वाच्यम्। गृहं समृज्याद्यं समृज्या तैश्चैकमिति वाक्य भेद प्रसंगात तथा च गृहमिति द्वितीयया गृहसेप्सित मत्वेनेदेश्यत्वाप्रयोजनत्वाच्च प्राधान्यं गम्यते। सम्मार्गस्तु गृहं प्रतिगुणभूत एव ततश्च प्रतिप्रधानं गुण आवर्तनीय इति न्यायाद्यावन्तो ग्राहस्तावतां सर्वेषां सम्मार्ग इति निश्चय सति कति ग्रहा सम्मार्जनीया इति बुभुत्साया अभावादुद्देश्य गतमेकत्वं श्रूयमाणमपि न विवक्ष्यते। यस्य च विशेषणस्य विवक्षामन्तरेणोद्देश्य प्रत्ययो न पर्यवस्यति तादृशं विशेषणमुद्देश्य गतमपि विवक्ष्यत एव यथा तत्रैव गृहत्वं तद्विवक्षामन्तरेण चोद्देश्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यमेव उद्देश्यता वच्छेदक निर्णयमन्तरेण चमस्वेष्वपि सम्मार्ग प्रसंगात तेन च तत्र तद्वारणं फलं पशुना यजेते त्यत्र तु यागं प्रति पशोर्विधेयत्वेन गुणभूतत्वात् प्रतिप्रधानं गुण आवर्तनीय इति न्याय प्रवेशो नास्ति यागस्य च प्रधानत्वादिति कियता पशुना यागः कर्तव्य इति बुभुत्सायाः सत्त्वादेकवचनेन प्रतीयमानं विधेयगतमेकत्वं विवक्षितमेव। किञ्च लिङ्गसङ्ख्याविशेषितस्यैकपदोपात्तस्य पशुद्रव्यरूपकारकस्य विधेयपशुद्वारा तल्लिङ्गसङ्ख्यादेरपि क्रियाङ्गत्वादेकत्वादिकं विवक्षितं। किञ्च तृतीयया विभक्त्याभिहितयो लिङ्गसङ्ख्ययोर्विभक्त्यभिहितया करणकारकशक्त्यात्मसात्कृतयोः प्रातिपदिकार्थपशुद्रव्येण सह सम्बन्धमा न धृत्य पशुवदेव साक्षाद् क्रियाङ्गत्वेन विधौ पञ्चादरुडय कहायनी न्यायेन वा परस्परम् वयोऽपि भवति यो यागाङ्गत्वेन विहितः पशु पुमांश्चेति तस्मात् सर्वथा पश्येकत्वादिकं विवक्षितमेवेति अर्थबोधिनी। ग्रंथकार ने विनियोक्तृ श्रुति के विभक्ति रूपा एक विधान रूपा एवं एक पद रूपा तीन प्रभेदों का उल्लेख किया था जिनमें से विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति का विवेचन इससे पूर्व किया जा चुका है। यहाँ एक विधान रूपा एक पद रूपा प्रभेद के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है। ग्रंथकार ने यहाँ पर एकाभिधान शब्द का प्रयोग न करके इसके स्थान पर समानाभिधान पद का प्रयोग किया है। यद्यपि इन दोनों शब्दों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है किंतु संज्ञा में परिवर्तन कर देना उचित नहीं प्रतीत होता है। हमारे ग्रंथकार मीमांसा न्याय प्रकाश से प्रायः वाक्य के वाक्य कुछ परिवर्तन के साथ उद्घृत कर देते हैं किंतु कहीं कहीं वे मूल वाक्य को ज्यों का त्यों रख देते हैं, इसलिए उक्त संज्ञा स्खलन हो गया है। विनियोक्तृ श्रुति का प्रभेद करते हुए मीमांसा न्याय प्रकाश के ये शब्द हैं। सा च त्रिधा विभक्ति रूपा समानाभिधान रूपा एक पद रूपा चेति एवं विवेचन करते समय उन्होंने इस प्रकार लिखा है पशुना यजेतेत्यत्रैकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वं यजेतेत्याख्याता विहित संख्याया भावनांगत्वं समानाभिधान श्रुतेः एक पद श्रुत्या च यागांगत्वं। किंतु लोगाक्षी भास्कर ने विनियोक्तृ के प्रभेदों का उल्लेख करते समय समानाभिधान शब्द का प्रयोग न करके एकाभिधान शब्द का प्रयोग किया है। सापि त्रिविधापि विभक्ति रूपा एकाभिधान रूपा एक पद रूपा चेति किंतु इन प्रभेदों का विवेचन करते समय उन्होंने उक्त स्वकृत परिवर्तन को भूलकर मीमांसा न्याय प्रकाश के वाक्यों को शब्दशः एक एवकार को छोड़कर उद्घृत कर दिया है, इसलिए उक्त स्खलन हो गया है। पशुना यजेत यत्रैकत्व पुंस्तवयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वं यजेत इत्याख्याता भीत संख्याया भावनांगत्वं समानाभिधान श्रुतेरेव एक पद श्रुत्या च यागांगत्वं पशुना यजेत। यह एक विधि वाक्य है, इसमें दो पद हैं, एक पशुना और दूसरा यजेत। पशुना में टा प्रत्यय है और यजेत में त प्रत्यय। यहाँ टा एवं त प्रत्ययों को समानाभिधान रूपा विनियोक्तृ श्रुति के उदाहरण एवं यजेत पद को एक पद रूपा विनियोक्तृ श्रुति के उदाहरण की दृष्टि से विचार किया गया है। टा प्रत्यय के वाक्य कारक एकत्व एवं पुंस्त्व लिंग है, अतः इन तीनों के एक समान प्रत्यय टा से ही अभिहित अर्थात कथित होने के कारण टा प्रत्यय को एकाभिधान या समानाभिधान कहते हैं। इन तीनों में से प्रकरण मुख्य है, क्योंकि कारक का ही साक्षात क्रिया से अन्वय होता है, संख्या आदि का नहीं। संख्या आदि कारक की अपेक्षा गौण होती है, अतएव एकत्व संख्या एवं पुंस्त्व लिंग कारक के अंग होते हैं। यद्यपि लिंग एवं संख्या प्रातिपदिक के अर्थभूत पशु में वर्तमान रहने के कारण उनके अंग कहे जाने चाहिए, क्योंकि पशुना यजेत का यही अर्थ होता है कि एक नर पशु से याग करना चाहिए। इस प्रकार संख्या आदि प्रातिपदिकार्थ से ही साक्षात संबंध संबद्ध रहते हैं, किंतु करण एवं संख्या आदि एक प्रत्यय गम्य होते हैं। अतएव करण की उपस्थिति मन में शीघ्र होती है और प्रत्ययार्थ प्रधान होता है, इसलिए संख्या एवं लिंग का अन्वय कारक से ही हुआ माना गया है। यजेत पद में त प्रत्यय है, इसी एक प्रत्यय से एकत्व संख्या एवं भावना दोनों अर्थों का अभिधान होता है, अतएव त प्रत्यय एकाभिधान अर्थात समानाभिधान है। इसलिए त प्रत्यय के वाच्य संख्या एवं भावना में अंगाअंगी भाव संबंध है। यहाँ संख्या अंग है एवं भावना अंगी। भावना पद से आर्थी भावना ली जानी चाहिए, क्योंकि शाब्दी भावना का साध्य होने के कारण शाब्दी भावना की अपेक्षा आर्थी भावना ही मुख्य है। ध्यान रहे, यहाँ एकाभिधान अर्थात समानाभिधान का अर्थ एक प्रत्ययाभिधान अर्थात समान प्रत्ययाभिधान समझना चाहिए। एक पद रूपा विनियोक्तृ श्रुति का उदाहरण यजेत, यह तिगंत पद है जिससे पूर्ववत संख्या भी अभिहित होती है और धात्वर्थ याग भी। स्वर्ग साधन भूत याग सर्वापेक्षया मुख्य होने के कारण अंगी होता है एवं संख्या तदपेक्षया गौण होती है, अतएव यजेत इस एक पद रूपा विनियुक्त श्रुति से संख्या याग का अंग समझी जाती है। प्रसंग, अमूर्त होने पर भी संख्या भावना का अंग हो सकती है, इस विषय का उल्लेख किया जा रहा है। अमूर्त पदार्थस्यापि भावनांगत्वं न चामूर्तस्यास्तस्याः कथं भावनांगत्वमिति वाच्यम्। कर्त्र परिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेह कर्ता चा क्षेप लभ्य आख्यातेन ही भावनोच्यते सा च कर्तारं विना अनुपपन्येति तमाक्षिपति। अर्थ, यह भी कहना उचित नहीं है कि वह अमूर्त संख्या भावना का अंग कैसे हो सकती है। यह इसलिए कि कर्ता के व्यावर्तक होने के कारण संख्या भावना का अंग होती है। यद्यपि यहाँ कर्ता का वाचक कोई पद नहीं है, फिर भी कर्ता का आक्षेप होता है। कर्ता का आक्षेप अर्थापत्ति प्रमाण से इस प्रकार होता है, आख्यात का वाच्य भावना होती है, भावना कर्ता के बिना संपन्न नहीं होती है, इसलिए भावना के द्वारा कर्ता का आक्षेप होता है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी ननु संख्याया न यागांगत्वं भावनांगत्वं च भवति गुणत्वेनामूर्तत्वात् न यमूर्तस्य रूपादेह कुत्रचिदंगत्वं दृश्यते विहादि द्रव्यस्यैव मूर्तभूतस्य यंगत्वमित्याशंकय परिहरति न चेत्यादिना भावनाया यागस्याप्युपलक्षणत्वं न चेति प्रतिषेधे हेतुमाह कर्तृति। कर्तुरर्थ भावना रूप व्यापारवतो याग कर्तु परिच्छेद द्वारा संख्या या भावना व्यंगत्वोपपत्तेरित्यर्थ नन्वेवं समानाभिधान श्रुत्या साक्षादेव कर्तरी संख्या ख्यातार्थ भूतान्वये तु तस्यैवाख्यातार्थत्वात् भावना तु कर्तव्य व्यापार भूता धातुनापि लभ्यते यथा चोक्तम् फल व्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङ् स्मृता इति। फलं विक्लित्यादि व्यापारस्तु भावनाभिधस्तत्र धातु स्मृतः आश्रये तु फलाश्रये कर्मणि व्यापाराश्रये कर्तरि च तिङ्ग स्मृता इति वैयाकरण वृद्ध वचन पदार्थः न च कर्तुराख्यात वाच्यत्वं प्रमाणिकमिति वाच्यं लह कर्मणि च भवे चाकर्मकेभ्यः इति मुनि प्रणीत सूत्रस्यैव चकारात् कर्तरि कृत इति सूत्रोक्त कर्तरित्यनुकर्षणेन लकाराणां सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च कर्मकेभ्यश्च भावे कर्तरि च विधायकस्य प्रमाणत्वात् तस्मात् कर्तर्येव समानभिधानश्रुत्याख्यातार्थ संख्या सम्बध्यते न भावनायामित्यासंख्याः कर्त्राचाक्षेप लभ्य इति आक्षेप अनुमानमर्था पत्तिर्वा तादृशाक्षेपेण लभ्योऽनुमेयः कल्प्यो वेत्यर्थः तदा च भावना साश्रया गुणत्वाद् व्यापार विशेषत्वाच्च सम्प्रतिपन्न गुणवत्तादृश व्यापार विशेषच्च तथा लोके व्यापार विशेषस्य निराश्रयस्यादर्शना भावनारूपो व्यापार विशेषोऽप्यन्यथा नुपपद्यमानः स्वाश्रयमाक्षिपतीत्यर्थापत्तिः न चेतनस्यैव कस्यचिदाश्रयस्य लाभ इति वाच्यम् कृतिशब्दाभिधेयस्य भावनारूप व्यापार विशेषस्याचेतनाश्रयत्वानुपपत्तेः किञ्च भावनाक्षिप्ते च कर्तराख्यातस्य लक्षणा स्वामी कारान्नशाब्दाः संख्याया अशाब्देन कर्तान्वयानुपत्तिः तस्यापि लक्षणया शब्दत्वात् शब्दगम्यत्वस्य हि शाब्दत्वात् न च कर्तुरेवाख्यातवाच्यत्वेन भावनाया आक्षेपलभ्यत्वम् स्यादिति वाच्यम् कृतिमत एव कर्तृत्वेन कृतेरेव भावनापरनाम धेयाया आकृत्यधिकरण न्यायेनाख्यातवाच्यत्व सम्भवे तद्वतः कर्तुराख्यातवाच्यत्व कल्पनाया गौरवात् किञ्च यस हि प्रकारान्तरेणालाभः स एव शब्दस्यार्थो भवति न तु तदन्यः शब्दवाच्यार्थः अनन्यलभ्यः शब्दार्थ इति न्यायात् अत एव न तीरं गङ्गापदार्थः तस्य लक्षणयैव प्रतिपन्नत्वात् एवं चोक्तन्यायेन भावनाया आख्यातवाच्यत्वे सम्प्रतिपन्नेतया च कर्तुराक्षेपेण लाभे पुनरपि तस्याख्यातवाच्यत्वकल्पनम् न न्यायविदां शोभते न च लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति मुनिस्मरण बलादेव कर्तुराख्यातवाच्यत्वं न स्वयं कल्पितमिति युक्तम्। वाच्यवाचक भावस्योक्त न्याय सहकृतान्वय व्यतिरेक गम्यत्वेन तस्य मुनिस्मरणा प्रयोज्यत्वात् तत्र कर्ति कर्म पदयोः कर्तृत्व कर्मत्व परत्वेन तस्य कृति कर्मत्वयोर् लकार विधायकत्व संभवाच्य किञ्च नास्य स्मरणस्य कर्तुराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणत्वं संभवति द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इत्यनेन सूत्रेण तस्य स्मरणस्यैकवाक्यत्वेन कर्तुरेकत्व एकवचनात्मको लकारो द्वित्ये द्विवचनात्मको बहुत्वे बहुवचनात्मको लकारो भवेदित्यस्मिन्नेवार्थे प्रमाणत्वात् न च कर्तुराख्यातान् विधेयत्वे देवदत्तेन पचतीति प्रयोगापत्तिः अनभिहितयोः कर्तिकरणयोः कर्तिकरणयोस्तृतीयाया एव विहितत्वादिति वाच्यम् उक्तन्यायेन कर्तृभावनयौ वा क्षेपात् तद्गतसङ्ख्यायाश्चाख्यातेनैव प्रतीतेस्तृतीयायाः कर्तृप्रतिपत्त्यर्थत्व तद्गतसङ्ख्याप्रतिपत्त्यर्थत्वयोरसम्भवात् तथा चोक्तम् वृद्धये संख्यायाम् कारके वा धीर्विभक्त्या हि प्रवर्तते उभयम् चात्र तत् सिद्धम् भावनातिङ्गविभक्तिः इति न च कृतामपि द्वूल त्रिजादीनाम् कर्तृवाचकत्वम् न स्यात्तत्र मानस्य वक्तव्यत्वादिति वाच्यम् कर्तरि कृदीति मुनि प्रणीत सूत्रस्यैव तेषाम् तत्र शक्तिग्राहकत्वात् ननु तर्हि कर्तरि कृदिति सूत्रादेव लह कर्मणित्यत्र कर्तृपदम् नुवर्तते तथा च तत्र तस्य धर्मे परत्वे तत्रापि तत्परता न्याया अत्र धर्मपरतायां तु तत्रापि धर्मपरतैव स्यादिति चेन्न शब्दाधिकार श्रेणादनुवर्तितस्य कर्तृपदस्य धर्मपरतायां बाधकाभावात् न च शब्दाधिकाराश्रयस्य गमकमन्तरेणासम्भवात् कृतामिवाख्यातस्यापि कर्तृवाचित्वमेवास्त्विति वाच्यम् कृतिमत् इत्यादिना तत्र गमकस्य दर्शितत्वात् तथा च कृतिशब्दाभिधेयस्य कर्तृधर्मस्याख्यातवाच्यत्वे सिद्धेनुवर्तितस्य कर्तृपदस्य धर्मपरत्वमेव न्याय्यम् समुच्चयार्थकेन लः कर्मणि चेति सूत्रस्थ चकारे डैव वा कर्तृधर्मस्यैव लाभो भवति न कर्तृपदानुवृत्तिः कर्तव्या कल्पना लाघवात् पूर्वोक्त न्यायेन कर्तृधर्मस्य भावनारूपस्याख्यातवाच्यत्वसिद्धे चेत्यलमति विस्तरेण तस्माद्भावने वाख्यातवाच्या न कर्त्रा तद्वाच्य इत्यभिप्रत्याह आख्यातेन हि भावनोच्यत इत्यादिना सा कर्तृव्यापार रूपा भावना कर्तारं विनानुपपद्यमाना पूर्वोक्त प्रकारेण कर्तरि मा क्षिपतीत्यर्थः अर्थबोधिनी विभाग संख्या 28 में यह बतलाया गया है कि भावना संख्या का अंग होती है किंतु संख्या अमूर्त है अतः वह भावना का अंग कैसे हो सकती है यह प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न इसके पूर्व विभाग संख्या 25 के अंतर्गत हो चुका है तथा उसका उत्तर भी वही दे दिया गया है। प्रश्न यह था कि आरुण्य गुण होने के कारण अमूर्त है फिर भी वह क्रयण क्रिया का अंग कैसे हो सकता है। आरुण के अंगत्व की सिद्धि में जो समाधान वहाँ मिलता है प्रायः वही समाधान यहाँ भी है। वहाँ आरुण गोद्रव्य परिच्छेद द्वारा क्रिया का अंग बनता है और यहाँ संख्या कर्ति परिच्छेद द्वारा भावना का अंग बनती है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि संख्या कर्ति परिच्छेद द्वारा भावना का अंग कैसे बनती है। जैसा कि पूर्व में विवेचन हो चुका है आख्यात तत्प्रत्यय के संख्या एवं भावना दोनों अर्थ होते हैं। भावना सर्वापेक्षया मुख्य होती है किंतु कोई भी भावना भावक कर्ता के बिना संपन्न नहीं हो सकती अतएव भावना की सिद्धि के लिए भावक कर्ता का होना अनिवार्य है। इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण से कर्ता के आक्षेप हो जाने पर भी कर्ता एक होगा दो होंगे या अनेक होंगे यह प्रश्न उपस्थित होगा। तब यजेत पद के तब प्रत्ययगत एकत्व संख्याकर्ता का परिच्छेद व्यावर्तन करती है कि कर्ता एक होगा इस प्रकार एकत्व संख्याकर्ता को परिच्छिन्न करती है और कर्ता भावना का भावक होता है। इस प्रकार एकत्व संख्याकर्ता के परिच्छेदक होने के माध्यम से भावना का अंग होती है। इसलिए यजेत पद का अर्थ यही समझा जाता है कि याग करे यद्यपि यजेत पद के साथ एक जनह पद का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी त प्रत्यय से ही कर्तृगत एकत्व संख्या का बोध हो जाता है। यह संख्या पूर्वोक्त प्रकार से त प्रत्यय बोध्य भावना का अंग होती है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि व्रीही आदि की भांति संख्या मूर्त नहीं है जो कि क्रिया में विनियुक्त हो सके तथापि अमूर्त होते हुए भी संख्याकर्ता का व्यावर्तन करने के कारण भावना का अंग होती है। यह सही है कि मीमांसक आख्यात का अर्थ कर्ता न मानकर भावना मानता है किंतु भावना के संपन्न होने के कारण कर्ता का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार आख्यात का वाच्य न होने पर भी कर्ता आक्षिप्त हो जाता है। प्रसंग श्रुति प्रमाण लिंग प्रमाण से प्रबल होता है इस विषय का विवेचन करते हैं। श्रुतिर्लिंगादिभ्यः प्रबला सेयम् श्रुतिलिंगादिभ्यः प्रबला लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः यावच्च तैर्विनियोजक शब्दः कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषाम् कल्पकत्वशक्तिर्व्याहतत्वात् अत एवन्द्रया लिंगानेन्द्रोपस्थानार्थत्वम् किन्तु इन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम् अर्थ पूर्वोक्त श्रुति लिंग वाक्य आदि प्रमाणों से अधिक बलवती होती है। इसका कारण यह है कि लिंग आदि स्थल में अंगा अंगी भावोदक श्रुति का साक्षात श्रवण नहीं रहता, अपितु इसकी कल्पना करनी पड़ती है। उन लिंग आदि प्रमाणों से जब तक प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द अर्थात श्रुति की कल्पना की जाए, तब तक प्रत्यक्ष श्रुति से विनियोग के हो जाने के कारण उन लिंगादि प्रमाणों की श्रुति कल्पना विशेष शक्ति खंडित हो जाती है। इसलिए लिंग प्रमाण से कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सी दाशुषे, यह इंद्रिय ऋचा इंद्र पूजन का अंग नहीं होती है, किंतु इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। इस वाक्य में श्रुत गार्हपत्यम इस द्वितीय श्रुति से इंद्रिय ऋचा गार्हपत्य नामक अग्नि के पूजन का अंग समझी जाती है। मीमांसार्थ संग्रह कौमुदी एवं श्रुतेह प्रमाणांतर निरपेक्ष विनियोजकत्वम निरूप्य तस्या लिंगादिभ्य पंचभ्य प्रमाणेभ्य प्राबल्यमाह सेयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबलेति कुत इत्याकांक्षायां तत्र हेतु माह लिंगादिषु न प्रत्यक्ष इत्यादिना यावच लिंगादिर्भिनियोजकः शब्दो अर्थ प्रकाशनादिना कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षोपलब्ध्य श्रुत्या शोषिणा शेष संबंध बोधस्य कृतत्वेन लिंगादिनां विनियोजक श्रुति कल्पन द्वारेण विनियोग शक्तेः प्रतिबद्धत्वात् द्वितीयार्थः तत्र लिंगा छुते प्राबल्य सिद्ध्यैव तस्मादपि दुर्बल्येभ्यो वाक्यादिभ्यस्त तस्याः प्राबल्य सिद्धये तावलिंगात् प्राबल्य मुदाहरणं प्रदर्शयन् साधयति। अथ एवेत्यादिना अतएव लिंग्यादिभ्यः श्रुते प्रबलत्वादेव इन्द्रया इति षष्ठी नेन्द्रसश्चसि तिंद्र प्रकाशन समर्थाया अपि ऋचो न लिंगादिन्द्रोपस्थानं गत्वमित्यर्थ। ननु यदिन्द्र प्रकाश सामर्थ्य रूपा लिंगा देन्द्रया ऋच इन्द्रोपस्थानार्थत्वं न भवति, तर्हि तत्रान्य प्रकाशन सामर्थ्य दर्शनेन तस्याः कस्यचिदप्युपस्थानार्थत्वा संभवा गयेत्यमेव स्यादित्याशंकते। किन्त्विति यद्यपि इंद्र शब्द से गार्हपत्य अग्नौ रूढ़िर्नास्ति तथापि तस्य गुणयोगेन याग साधनत्वेन वा मुखेन्द्र सदृशत्वात् गुणवृत्तिरस्ति, तथा चेन्द्रियास्तत् प्रकाशन सामर्थ्यस्यापि सत्वेन द्वितीयाया श्रुत्या तदुपस्थानार्थत्वं निर्विघ्न मुपपद्यत इति समाधत्ते। इंद्रया गार्हपत्यमित्यादिना अत्रायमाशयः इंद्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठत इति श्रूयते, तत्र च कदाचनस्त रीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इत्यसा वृगेन्द्री तत्रेन्द्रस्य प्रकाशनात् भो इंद्र कदाचिदपि न सश्चसि घातको न भवसि किन्त्वाहुतिं दत्तवते यजमानाय प्रियस इति तस्या अर्थः। तत्रेन्द्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपा लिंगान मंत्रस्येन्द्र विमंत्रणेन्द्र प्रकाशनम् व्यर्थम् स्यात्, तस्मादे मंत्रकरण क्रियां प्रति इन्द्रः प्रधानमित्येतां दृशबुद्ध्युपादनम् लिंग विनियोगः कासौ क्रियेति विशेष जिज्ञासाया मैन्द्रयोपतिष्ठत इत्यनेना विरुद्ध पद द्वयरूपेण वाक्येनोपस्थान क्रियायां पर्यवसानं क्रियते तथा सत्येन्द्र मंत्रेणेन्द्र उपतिष्ठेतेत्यर्यमर्थः पर्यवस्यति, तथा गार्हपत्यमित्यनया द्वितीयान्त पद रूपया श्रुत्या गार्हपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते, तच्च गुणभूता यकिंचित् करण क्रियामन्तरेण न संभवति, ततस्तादृशीं काञ्चित् क्रियां प्रति गार्हपत्यः प्रधानमित्येतादृश बुद्ध्युपादनं श्रुतिविनियोगः। इन्द्रियोपतिष्ठत इति पदद्वये मंत्रविशेष क्रियाविशेषयोः पर्यवसानं भवति, तथा सत्येन्द्र मंत्रेण गार्हपत्यमुपतिष्ठत इत्यर्थो भवति। यद्यपि प्रमाणत्व विशेष श्रुतिलिंगयोर् विरोधे प्राप्ते ब्रीहियव द्विकल्पः स्यात्। इन्द्र गार्हपत्ययोः प्रधानत्व विशेषादुपस्थानस्य च गुणत्वात् प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेनोपस्थानावृत्त्या श्रुतिलिंगयोः समुच्चयो वा स्यात्। श्रुतिर विनियुज्यानां वस्तु सामर्थ्यमनुसृत्यैव विनियुक्ते अन्यथा वह्निना सिंचेर द्वारिणा दहेदित्यपि विनियुज्येत। तस्मादुपजीव्यत्वेन लिंगस्य प्रबलत्वादिन्द्र एव मन्त्रेणो पस्थेयो वा स्यात्। तथा प्येन्द्र मन्त्रस्य गर्भपत्ये अग्नौ मुखवृत्त्या सामर्थ्याभावेऽपि गुणवृत्त्या सामर्थ्यस्योक्त स्वासामर्थ्याभावकृत प्रतिबन्धाभावान्निर्विघ्ना श्रुतिराशु विनियुङ्क्ते। लिंगं तु विलम्बेन विनियुक्ते तथा हि तत्र प्रथमं मन्त्रपदानि स्वाभिधेयार्थं प्रतिपादयन्ति। तत ऊर्ध्वं मन्त्रस्य वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यं निरूप्यते। तत ऊर्ध्वं च तत् सामर्थ्यवशा साधनत्व वाचिनि प्रधानत्व वाचिनि च श्रुतिः कल्प्यते। कल्पिता च श्रुतिः पश्चादेन्द्र मन्त्रेण मुपतिष्ठेतेति विनियुक्त इति मंत्र पदाभिधेय प्रतिपादन विनियोग पयो मध्यवर्तिनौ सामर्थ्य निरूपण श्रुति कल्पना कल्पन व्यापारौ भवतः। प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग पक्षे तु मंत्र पदाभिधेय प्रतिपादन मात्रेण तस्या विनियोजकत्व संभवात न तौ मध्यवर्तिनौ व्यापारौ भवत इति श्रुतेः। प्राबल्यात्तया लिंगं बाध्यते न च प्रत्यक्ष श्रुति विनियोग वेलायाम लब्धात्मकत्वेन प्राप्तं लिंगं श्रुत्या कथं बाध्यत इति वाच्यम्। तार्तीय बाधत्वेन भविष्यत् प्राप्ति बन्धस्यैवात्र बाधत्वात् बाधस्य द्विविध प्राप्तबाधो अप्राप्तबाधस्य। तत्र दशमे प्राकृतानामंगानां चो दकेन विकृतौ प्राप्तानां प्रत्ययां नादर्थ लोपात् प्रतिषेधाद्वा यो बाधः स प्राप्तबाध यथा चो दक प्राप्तानां प्राकृतानां कुशानां शर्मयं बर्हिरिति प्रतिकूल शरामनाद्वादः द्वादः यथा चावघात प्रयोजनस्य वैतुष्य रूपस्य लोपात् कृष्ण लेश्वघातस्य बाध यथा च पित्रेष्टौ न होतारं वृणीत इति प्रतिषेधा धोदृतवर्णस्य बाध अप्राप्तबाधस्तु तृतीयाध्याये यो बाध तत्र हि या दुर्बल प्रमाणेन विनियोगः कर्तुमारभ्यते तावत् प्रबल प्रमाणेन विनियोगस्य कृतत्वादेव तेन वा तद्वोधितेन वेतर्वाधो प्राप्तबाध एव दुर्बल प्रमाणस्य वृत्तत्वादेव। ततश्च कथञ्चित् प्राप्तभाविप्रवृत्तिप्रतिबन्धस्यैवात्र बाधत्वमिति सिद्धम्। तस्माद् द्वितीयया श्रुत्या विनियुक्तस्यैव मन्त्रस्य पुनर्विनियोगाकाङ्क्षाया अनुदयाद् विनियोजकं तस्यैव लिङ्गं न प्राप्स्यति। तस्माद् गार्हपत्योपस्थानम् एव मन्त्रः प्रत्यक्षश्रुत्यैव विनियुज्यत इति सिद्धम्। एवम् अग्निचयने समाम्नाता निवेशनः संगमन इत्यादि कापि काचित् गन्ध्री भवति तस्या उत्तरार्ध इन्द्रो न तस्थाविति पठनात् सापि निवेशनः संगमनो वसुनामित्येन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठत् इति ब्राह्मणे तृतीयेन्द्रियेति श्रुत्या गार्हपत्योपस्थाने विनियुज्यते। तथा अपि पूर्वोक्त न्यायेन गार्हपत्य प्रकाशन सामर्थ्यस्य सत्वात् न च मन्त्रस्थेन्द्रपदस्य गुणवृत्त्या गार्हपत्ये अग्नौ वृत्तत्वे अपि रूढया तु स्वर्गाधिपतौ सहस्राक्ष इन्द्रे वृत्तत्वान् मन्त्रेण प्रकाशिते। मुख्येन्द्रे मन्त्रब्राह्मणयोर्विवादपरिहाराय ब्राह्मणस्थगार्हपत्यशब्देन निरुक्तगुणशब्द सम्बन्धद्वारेणेन्द्रो लक्षणीय इति वाच्यम्। इन्द्रगार्हपत्यशब्दयोर् रन्त्यतरस्य गौणत्वे अवश्यं भाविनी सति मन्त्रस्य प्राप्तार्थत्वेनानुवादकत्वसम्भवान् मन्त्रस्थेन्द्रपदस्यैव गौणत्वस्य न्यायत्वात् ब्राह्मणवाक्यस्याप्राप्तर्थेन विधायकत्वाद्विधौ लक्षणाया अन्यायच्चत्वाच्च। तस्माद् गार्हपत्यप्रकाशने समर्थमेव मन्त्रमेन्द्रियेति तृतीया श्रुतिर्गार्हपत्योपस्थाने विनियुक्त इति सिद्धम्। एवं श्रुतेर्लिंगस्य दौर्बल्य वलिंगादेह पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् परस्य परस्य वाक्य देरे कविनियोज विनियोज्य विषयत्वेन विरोधे दौर्बल्यं स्वार्थावबोधने परस्य पूर्व व्यवधानेन प्रवित्तेह तथा च सूत्रं श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पार दौर्बल्यम् अर्थ विप्रकर्षादिति अर्थबोधिनी। कुछ विनियोग स्थल ऐसे होते हैं जहाँ श्रुति आदि अनेक प्रमाण इकट्ठे होकर विनियोग का बोध कराने लगते हैं, जैसे कि यदि श्रुति द्वारा पदार्थ विशेष किसी एक का अंग होता हुआ ज्ञात होता है तो लिंग द्वारा वही पदार्थ विशेष दूसरे का अंग होता हुआ प्रतीत होता है, किंतु कोई पदार्थ एक काल में एकाधिक पदार्थों का पृथक पृथक अंग नहीं हो सकता, अपितु एक पदार्थ का एक ही अंग हो सकता है। उसी अंगीभूत एक पदार्थ का निश्चय श्रुति आदि प्रमाणों के परस्पर बलाबल से होता है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान एवं सामाख्या इन छह प्रमाणों में से प्रत्येक प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण से अपेक्षाकृत अधिक बलवान और पूर्ववर्ती प्रमाणों से अपेक्षाकृत अधिक दुर्बल है। श्रुति प्रथम प्रमाण है, वह अपने परवर्ती लिंग प्रमाण से अधिक बलवान है, लिंग वाक्य से बलवान किंतु श्रुति से दुर्बल है। इसी प्रकार अन्य प्रमाणों के विषय में भी समझना चाहिए। अंतिम प्रमाण समाख्या सर्वापेक्षा दुर्बल है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्रुति लिंग एवं तत्परवर्ती सभी प्रमाणों से बलवती है, इसलिए ग्रंथकार ने श्रुति को लिंगादिभ्य प्रबला कहा है। श्रुति आदि छह प्रमाणों में से प्रत्येक प्रमाण अपने परवर्ती प्रमाण की अपेक्षा अंगांगी भाव का बोधक शीघ्र करा देता है। जो प्रमाण जितना अधिक परवर्ती होता है वह अंगांगी भाव का बोधक कराने में उतना ही अधिक दूर रहता है, अतएव अंगा भाव बोधक रूप प्रयोजन से दूर होने के कारण परवर्ती प्रमाण अपने पूर्ववर्ती प्रमाण से अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। लिंग की परिभाषा अग्रिम विभाग में की गई है, जिसके अनुसार लिंग का अर्थ शब्द सामर्थ्य होता है। शब्द सामर्थ्य से अभिप्राय शब्द के अभिधेय अर्थ के बोध कराने में क्षमरूढ़यात्मक शक्ति से है। लिंग के स्वरूप एवं श्रुति से उसकी दुर्बलता का स्पष्ट ज्ञान ग्रंथोक्त उदाहरण पर विचार करने से हो जाता है। कदाचन स्तरी रसिनेन्द्र सिदाशुषे इत्यादि मंत्र ऋग्वेद के में मिलता है। इस ऋचा में इंद्र पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस ऋचा को ऐन्द्री कहते हैं। प्रश्न यह है कि इस ऋचा का विनियोग कहाँ होना चाहिए। इस ऋचा में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है तो क्या यह मंत्र इंद्र पूजन इंद्रोपस्थान का अंग है अथवा ऐन्द्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठते। वाक्य के गार्हपत्यम पदगत द्वितीय विभक्ति रूपा विनियोक्तृ श्रुति से गार्हपत्य पूजन का अंग है। इस प्रकार कदाचन स्तरी रसि आदि एक ही ऋचा एक ही काल में लिंग प्रमाण से इंद्र पूजन एवं श्रुति प्रमाण से गार्हपत्य पूजन का अंग हो रही है। जो कि संभव नहीं है, अतः यह निर्णय करना आवश्यक है कि श्रुति एवं लिंग इन दोनों में कौन अधिक बलवान है, जिसकी बलवत्ता के आधार पर उक्त मंत्र को इंद्र स्तुति अथवा गार्हपत्य स्तुति किसी एक का ही अंग माना जा सके। यह जिज्ञासा होने पर निर्णय यह होता है कि श्रुति यतः लिंग से भी प्रबल है, क्योंकि यह लिंगापेक्षा शीघ्र गार्हपत्य स्तुति के प्रति मंत्र की अंगता सिद्ध करती है, अतः मंत्र गार्हपत्य स्तुति का ही अंग सिद्ध हो जाता है। इस विषय को इस प्रकार समझना चाहिए कि लिंग से विनियोग के बोध होने में अधिक समय लगेगा। इस प्रकार है, लिंग से विनियोग बोध होने में चार व्यापारों की आवश्यकता होती है। एक, स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन। सर्वप्रथम कदाचन स्तरीरति नेन्द्र सिदाशुषे इस मंत्र के दो पदों के पदों का अभिधेय अर्थ ज्ञात होता है। दो, वस्तु प्रकाशन सामर्थ निरूपण। मंत्रार्थ बोध के पश्चात इंद्र शब्द की शक्ति से ज्ञात होता है कि यह मंत्र इंद्र परक है। तीन, अंगांगी बोध श्रुति कल्पना। मंत्र इंद्र परक है ऐसा बोध होने के पश्चात इस मंत्र से इंद्र का उपस्थापन करता है। अनेन मंत्रेण इंद्र उपतिष्ठते, इस प्रकार की श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। विनियोग, उक्त श्रुति की कल्पना हो जाने के पश्चात इंद्र मंत्रेण इंद्र उपतिष्ठेत अर्थात इंद्र मंत्र से इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार विनियोग होता है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि ऐन्द्र मंत्र इंद्रोपस्थापन का अंग है, ऐन्द्र मंत्र से इंद्रोपस्थानांगत्वम। इस प्रकार स्वार्थाभिधेय प्रतिपादन एवं विनियोग के बीच वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण एवं अंगा अंगी बोधक श्रुति कल्पना, इन दो व्यापारों का व्यवधान होता है, किंतु श्रुति के द्वारा विनियोग होने में केवल दो व्यापारों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इंद्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ गार्हपत्यम पद में श्रुति ही है ही, उसकी कल्पना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव विनियोग के लिए दो व्यापारों की आवश्यकता होती है। एक स्वाभिधेयार्थ प्रतिपादन अर्थात इंद्रया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इस मंत्र के पदों के अभिधेय अर्थ का ज्ञान। अभिप्राय यह है कि इंद्रिय ऋचा के अर्थ सहित गार्हपत्यम उपतिष्ठते पदों का ज्ञान आवश्यक है। दो विनियोग, इस प्रकार हम देखते हैं कि लिंग द्वारा विनियोग होने पर चार व्यापारों की आवश्यकता होती है, जबकि श्रुति द्वारा विनियोग होने पर केवल दो व्यापारों की। अभिप्राय यह है कि श्रुति के द्वारा विनियोग होने के स्थल में मंत्रबोध के पश्चात तुरंत अंगांगी भाव का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो व्यापारों में ही श्रुति के द्वारा विनियोग हो सकता है, जबकि लिंग द्वारा दो व्यापारों में वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य निरूपण ही हो पाता है। अतएव श्रुति विनियोग पक्ष में श्रुति द्वारा विनियोग हो चुकने के कारण लिंग विनियोग पक्ष में लिंग द्वारा श्रुति की कल्पना करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता। अतएव लिंग की श्रुति कल्पना विषयक शक्ति खंडित हो जाती है। इसलिए श्रुति लिंग से प्रबल मानी जाती है, और तदनुसार कदाचन स्तरी रसि नेन्द्र सक्षसि दाशुषे, यह मंत्र श्रुति प्रमाण से गार्हपत्योपस्थान का अंग होता है, न कि लिंग से इंद्रोपस्थान का। ग्रंथ के अन्य स्थलों में ब्रीहिणाम यागांगत्वम आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयांगत्वम प्रोक्षणस्य ब्रीहांगत्वम मंत्रस्या स्वाभिध्यान्यंगत्वम आदि पदों में अंगत्वम पद का प्रयोग किया गया है, किंतु प्रकृत स्थल में अत एवंद्रया लिंगानेन्द्रोपस्थानार्थत्वम एवं गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम में अर्थत्वम पद का प्रयोग मिलता है। वस्तुतः अंगत्व एवं अर्थत्व पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकृत अर्थत्व को परार्थत्व या परार्थ्य भी कहा जा सकता है। अर्थ संग्रह के मूलभूत ग्रंथ मीमांसा न्याय प्रकाश में अर्थत्वम पद का प्रयोग मिलता है। प्रायः सर्वत्र अंगत्वम पद का प्रयोग करने पर भी यहाँ श्रुति लिंग बलाबल विचार स्थल में अर्थत्वम पद का प्रयोग करने का कारण श्रुति लिंग आदि प्रमाणों के बलाबल का प्रतिपादन करने वाले जैमिनीय सूत्र में प्रयुक्त अर्थ पद का प्रभाव है। प्रसंग, अब लिंग प्रमाण एवं सामाख्या प्रमाण की अपेक्षा उसकी प्रबलता का निरूपण किया जा रहा है।